ओम शांति। आज सुबह से हमारे बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं सभी सेशन? सुनते सुनते लग रहा है ना कि ये चीज को हम जीवन में प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण कर लें, ताकि इससे आपको तो फायदा होगा ही, लेकिन आपके द्वारा अनेकों को भी इसकी प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो हम आध्यात्मिक बातें सुन रहे हैं, वो हमें पढ़ाने वाला कौन? क्योंकि नाम तो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय में जो पढ़ाने वाला है वो सुप्रीम शिक्षक है, परमपिता परमात्मा स्वयं बैठकर हमें पढ़ाते हैं ये ज्ञान, और इस रूप से पढ़ाते हैं कि ये ज्ञान की बातों को हम जीवन में अपने प्रैक्टिकल में इंटीग्रेट कर लें लाइफ में। तो हम ये बातें पहले भी समझते थे, जैसे आज सुबह भी बताया शिवानी बहन ने कि ये बातें कोई नई नहीं है, बहुत सारी बातें जानते थे, बहुत सारी बातें और स्पष्ट हो गई। लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्तियों का स्रोत जो हम आज सुबह देख रहे थे कि आत्मा का भी निज स्वभाव ही दैविक गुण है, शांत स्वरूप है आत्मा, पवित्र स्वरूप है। तो ये गुणों का और शक्तियों का स्रोत कौन है, सोर्स कौन है, क्या कहेंगे, जहां से हम ये शक्तियों को अपने अंदर फिर से रिचार्ज करते रहे। जैसे आप सभी को गाइड भी करते हैं एज डॉक्टर्स भी हेल्थ केयर के लिए, कि ये शरीर को भी सशक्त रखना है, तो इसलिए इसको समय पर हेल्दी फूड देना है, हमें इसको एक्सरसाइज देना है, क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी अच्छी हो, तो ये शरीर सशक्त रहता है सारा दिन कारोबार के लिए। ऐसे ही आत्मा को भी अगर सशक्त रखना है, तो ये आत्मा के जो ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, वर्चूज और क्वालिटीज सशक्त करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए स्रोत कौन, क्या कहेंगे, सोर्स कौन, किससे कनेक्ट करें जो हम फिर से ये शक्तियों को अपने अंदर भरते जाएं, रिचार्ज करें, परमात्मा के लिए हम समझते हैं। लेकिन उनका परिचय क्या, जिससे हम सहज ही अपने मन बुद्धि को डायरेक्ट उस परमात्मा से कनेक्ट कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ परमात्मा ही स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से तो वही जान सकता है नहीं। तो परमात्मा का ऐसा परिचय जो हरेक आत्मा इसको स्वीकार, इस समय विश्व की हरेक आत्मा जो है वो कोई ना कोई रूप से ईश्वर के पास पहुंचने के लिए उनको बहुत प्यार से याद भी करते हैं, कोई ना कोई धर्म, कोई ना कोई आध्यात्मिक यात्रा में है, स्पिरिचुअल फिलॉसफी इसको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि उनको पहुंचने, उनके पास पहुंचने के लिए हम समझते हैं रास्ते अलग हैं, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे। लेकिन परमात्मा स्वयं आकर जब अपना परिचय देता है, तो हमारी मन बुद्धि को उनके साथ सहज कनेक्ट करने के लिए विधि सिखाता है। तो इसलिए आज हम जो परिचय सुनेंगे, जो परमात्मा हमें स्वयं आकर हरेक आत्मा के लिए ये एक सर्वमान्य स्वरूप, एक सर्वमान्य परिचय हमें देते हैं, तो हमने हमेशा उनको बहुत प्यार से याद किया है। यहाँ जो भी बैठे हैं, हर एक का अपना पर्सनल कनेक्शन ईश्वर के साथ है, ऐसा है ना, है ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने यूनिक हमारी फीलिंग्स है, हमारा पर्सनल उनके साथ कनेक्शन और अनुभव भी बहुत सारे, हर एक से पूछेंगे तो बहुत सारे अनुभव भी होंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि हमने हर एक धर्म में भी बहुत प्यार से श्रद्धा से उनको याद किया है, और उनको याद करने के आधार से हमने प्राप्ति भी की है। अब हम ऐसी प्राप्ति का अनुभव करना चाहते हैं कि हम अपने मन बुद्धि को सारा दिन उनके साथ कनेक्टेड रख सके, एक नेचुरल स्वरूप में, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका अपने परिवार के साथ मन बुद्धि से एक नेचुरल कनेक्शन बना रहता है, ऐसा है ना। यहाँ बैठे भी आपको कहें तो आप अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, जीवन साथी को याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इजी है। आप सुन रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने शब्द कहा जीवन साथी, बच्चे, तुरंत मन बुद्धि से वहां कनेक्शन हो गया, हो गया ना। सुनते सुनते भी उनको बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। ऐसा ही हमारा कनेक्शन उस परम पिता से हो जाए, जो सारा दिन कारोबार करते हुए हम नेचुरल रूप में मन बुद्धि की तार को उनके साथ जोड़ सके, और कर्म करते भी जब हम उनकी याद में रहकर हर कार्य करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। नेचुरल रूप में अगर हर कर्म करते, हर संबंध में आत्मा की याद होगी तो क्या फायदा होगा। आत्मा जब उस परमात्मा से कनेक्ट कर लेती है तो वो तो हर गुण और शक्ति का स्रोत है, सागर है। तो साइंस भी कहता है कि व्हेन टू एनर्जीज मीट, फ्लो ऑफ एनर्जीज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो जैसे हम अपने मन बुद्धि की तार को उस सुप्रीम से, उस परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं, और ये सारा दिन कनेक्टेड रहता है, तो वहां से शक्तियां हमारे अंदर आती जाती हैं। और जैसे हमने सुबह भी सुना, हमारी मनोस्थिति भी हमेशा ऊंची रहती है, और उस ऊंची मनोस्थिति से, श्रेष्ठ मनोस्थिति से जो कार्य हम करते हैं, कार्य तो सक्षम होता ही है, संपन्न होता ही है, लेकिन हमारे आसपास के भी और आत्माओं को, उस वातावरण को भी हम सशक्त कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हर एक धर्म में हमने उनको याद किया, लेकिन अब हम कई बार ये मन से कंप्लेन भी करते हैं ईश्वर को कि हम आपको याद तो रखना चाहते हैं हर पल, लेकिन मन हमारा हर पल आपकी याद में लगता नहीं है। कहते हैं ना, प्यार से कहते हैं ना, मन हमारा आपके याद में एकाग्र चित नहीं होता है। तो इसलिए ये कंप्लेन जो है ईश्वर परिवर्तन करते हैं, हमें एक बहुत सुंदर और सहज विधि सिखा देते हैं। अब अगर हम देखें कि परमात्मा का हमारे जीवन में रोल क्या है, क्योंकि हमने उनको भी याद किया, ऐसे हमारे जीवन में हमने बहुत सारी विशेष आत्माओं को याद किया है। तो मनुष्य आत्माएं तो हम सब हैं, तो वो अनेक हम देखते हैं। हम मनुष्य आत्माओं में से कई आत्माएं जो है कोई विशेष कार्य करती हैं, कोई विशेष पुण्य का कार्य करती हैं, तो हम उनको पुण्य आत्माएं कहते हैं। ऐसे पुण्य आत्माएं भी अनेक है और हम उनको भी याद करते हैं। ऐसे महान कार्य करने वाली महान आत्माएं भी अनेक है। धर्म के कार्य में बहुत विशेष योगदान देने वाली, अपने अनुभव से हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ने वाली, ऐसी विशेष धर्म स्थापक आत्माओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सृष्टि पर। तो धर्म आत्माएं भी अनेक, जो धर्म पिताएं हैं, धर्मात्माएं हैं, वो भी अनेक हैं। ऐसे ही हम कई देवी देवताओं की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हर एक के अपने अपने कुल देव और देवी भी होते हैं। तो ऐसे देवी देवताएं भी अनेक हैं। और परमात्मा, परमात्मा के लिए हम क्या कहेंगे, परमात्मा एक या अनेक? एक, क्योंकि ये शब्द परम अर्थात इसका अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सुप्रीम, सुप्रीम माना ही एक। तो वैसे विशेष आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परम आत्मा एक है। तो वो विशेष परमात्मा किन बातों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, जिसके कारण उनको हमने परमात्मा का, सुप्रीम का। तो हम देखते हैं कि कई विशेषताएं बहुत यूनिक है उनमें, जिसके वजह से हमने उनको परम आत्मा कहा है। तो उन्होंने आकर अपने परिचय में हमें बताया है कि परमात्मा जो है सर्व ऊंच है, सर्वोच्च भी कहते हैं, जिसके लिए गायन है कि उनका नाम भी ऊंचा है, उनका कार्य भी ऊंचा, काम भी ऊंचा और धाम भी ऊंचा। नाम ऊंचा, काम ऊंचा, धाम ऊंचा, इसलिए उनको हम सर्वोच्च भी कहते हैं। दूसरा कारण है सर्वज्ञ कहते हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाला। कई बार दुनिया में भी हम कुछ जानकारी नहीं जानते और बार बार कोई हमें पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या, तो हम कहते हैं मुझे नहीं पता, भगवान जाने, कह देते हैं भाषा में, ऐसे कह देते हैं, गॉड नोस, आई डोंट नो। तो भगवान जाने, पर भगवान क्यों जाने? वही हर चीज क्यों जाने? क्योंकि वो रचयिता है, तो इसलिए उनको सब कुछ जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ भी कहा गया है। तीसरी बात, वह सर्वोपरि है, हमें भी इन कर्म बंधनों से परे ले जाने वाला सर्वोपरि है, सर्व प्रभावों से, सर्व बंधनों से, सर्व प्रकार के चक्रों से परे, बियॉन्ड ऑल इन्फ्लुएंसेस एंड बॉन्डेजेस। चौथी बात, परमात्मा सर्व गुण और शक्तियों के स्रोत है। आत्मा के लिए जो भी गुण शक्ति की आवश्यकता है, प्राप्ति की आवश्यकता है, उसके वो स्रोत है, सोर्स है, इटर्नल एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सबके पिता है, इसलिए सर्वमान्य है। हम एक एक बात लेते जाते हैं। पहली बात है कि परमात्मा सबसे ऊंचे, अब उनका नाम ऊंचा, तो जब हम परमात्मा की महिमा करते हैं तो हमने उनका कंपैरिजन, उनकी उपमा सागर से की है। तो हम देखते हैं कि हर एक में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, हम एक दूसरे को कई बार अप्रिशिएट भी करते हैं और हम कहते हैं कि ये इनमें बहुत सत्यता है, ये बहुत शांत स्वभाव वाले हैं, कहते हैं। लेकिन परमात्मा की महिमा जब करते हैं तो कहते हैं वो शांति का सागर है, सागर अर्थात बेअंत। प्रकृति भी हमें कहीं ना कहीं हाँ में हाँ कर रही है, तो परमात्मा जो है वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है। तो हर क्वालिटी में, हर विशेषता में सागर का है। सागर से उपमा क्यों की उनकी, हमने सागर से कंपैरिजन क्यों किया, सागर की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है? बेहद है, अनलिमिटेड है, इटर्नल है, लिमिटलेस है, बाउंड्रीलेस है ना? इसलिए हमने कहा कि वो शांति का सागर है। कोई व्यक्ति को हमने कहा ये शांत स्वभाव वाला है, क्योंकि शायद जो व्यक्ति शांत स्वभाव वाला है वो वैसे तो शांत ही रहता है, लेकिन कोई परिस्थिति में कभी कभी उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अपसेट हो जाता है, लेकिन वैसे हर परिस्थिति में शांत रहता है। परमात्मा को कहा शांति का सागर अर्थात शांति देने वाला दाता, हर गुण और शक्ति में सागर का स्वरूप है, अनलिमिटेड। तो परमात्मा का नाम भी ऊंचा और उनका कर्तव्य भी ऊंचा। अब ईश्वर के साथ जब हम उनको प्यार से याद करते हैं तो उनका कौन सा कर्तव्य हमारे लिए बहुत प्रिय है, हम उनको किस कर्तव्य के आधार से व्यक्तिगत रूप में पर्सनल लेवल पर याद करते हैं, उनका कौन सा कर्तव्य हमें प्रिय लगता है, कौन सा कर्तव्य? व्हाट इज हिज रोल इन माय लाइफ, व्हाट इज हिज डिवाइन एक्ट व्हिच इज वेरी टचिंग फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। परमात्मा का ऐसा कौन सा कर्तव्य जो मुझे बहुत प्रिय है? जी सुनाई नहीं दे रहा है। प्रेम देने वाला है, ऑलवेज गिविंग अस लव, एंड कैसा प्यार? अनकंडीशनल, निस्वार्थ, निर्मल, असीम प्यार और काइंडनेस। यस, और कर्तव्य और कौन सा है? ये है कि दाता है, हमेशा देने वाला, हम जो चाहें उनसे लें लेकिन वो हमेशा देता है, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, अनकंडीशनल। और कौन सा कर्तव्य है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हम कौन सी विशेष परिस्थितियों में उनको याद करते हैं? ऐसे तो सारा दिन बिजी है, कारोबार में भूल जाते हैं, लेकिन कौन सी परिस्थिति में विशेष याद करते हैं? जी दुख में, परेशानी में, दुख हरता सुख करता, ये उनका विशेष रोल है ना? जब भी ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन दुख वाली होती है तो विशेष याद करते हैं। इसलिए शास्त्रों में, गीता में लिखा भी गया है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो हम उनको दुख में याद करते हैं क्योंकि उनका ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, दुख हर कर हमें सुख की अनुभूति में रखना। तो परमात्मा हमें ज्ञान भी देते हैं, समझ देते हैं दुख का कारण, जो आज सुबह भी हम सुन रहे थे कि कैसे हमें अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को चेंज करना है। वो हमें अपने मन को वो सिखाना है कि हमेशा कैसे उस सुख में रह सके, सकारात्मक रह सके। तो परमात्मा ज्ञान की समझ भी देता है, शक्ति भी देता है। और कौन सा कर्तव्य जो बहुत महत्वपूर्ण है? जी जी, शांति के सागर, शांति देने वाले। इस समय हम देखते हैं कि आजकल जो हीलिंग है, हेल्थ के लिए जो सभी लोग जाते हैं, तो एक तो एलोपैथी है, उसके अलावा भी बहुत सारी पैथीज है, और अब धीरे धीरे नेचुरोपैथी की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं ना, कि बॉडी की क्लेंजिंग हो जाए, टॉक्सिन्स जो है शरीर में वो डिटॉक्स कर सके। तो आत्मा की जो अंदर में ये टॉक्सिन्स हैं, उसको डिटॉक्स करने वाला कौन? आत्मा की क्लेंजिंग करने वाला कौन? आत्मा का शुद्धिकरण। इसलिए हम कहते हैं पतित पावन, आत्मा को प्योरिफाई करने वाला। तो आत्मा के अंदर से क्लेंजिंग करना, वो परमात्मा का कर्तव्य है। तो कैसे ज्ञान की समझ भी हमें देता है, और योग के द्वारा हमारे अंदर वो बल भरता है जो आत्मा अंदर से प्योर, फिर से उसकी ओरिजिनल प्योरिटी जो है, दिव्यता जो है, वो जागृत होती जाती है। तो कर्तव्य भी परमात्मा का बहुत ऊंचा है। अब तीसरा हम देखते हैं कि कर्तव्य जो है उनकी महिमा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये कर्तव्य के साथ साथ परमात्मा का रहने का स्थान भी ऊंचा है। अब ये बात हम देखते हैं कि हमें सभी धर्म पिताओं ने हमें ये दिशा दी कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर की ओर। तो अगर हम देखें तो हम छोटे बच्चे भी अगर उनको पूछते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, ऊपर की तरफ इशारा देते हैं। हमारे इस्लाम में भी देखते हैं कि जब मास पढ़ते हैं तो भी उनकी उनकी दृष्टि और उनकी बुद्धि कहाँ चली जाती है? ऊपर में। हम क्रिश्चियन धर्म में भी देखते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर अबव, तो परमात्मा को ऊपर याद करते हैं, गॉड फादर अबव। हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं कि ईश्वर को कहा जाता कि वो नीली छतरी वाला, ऊपर वाला। तो हम देखते हैं कि साइंस ये बताता है कि इस सृष्टि में कोई भी जो खोज होती है, रिसर्च होता है, तो कहाँ खोज हो रही है? ऊपर की ओर। ये अर्थ के अंदर क्या है, ग्लोब जो है उसके अंदर क्या है? जी, मिनरल्स है, धातु आदि है, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं वो ऊपर की ओर, स्पेस के भी बियॉन्ड। और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट भी हमें बताते हैं इन तीन स्पेसेस के बारे में, थ्री वर्ल्ड्स के बारे में। साइंस में कहा गया है कि फिजिक्स में ये तीन वर्ल्ड्स के बारे में कई साइंटिस्ट ने मेंशन किया हुआ है कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज लाइट के स्पीड के नीचे चलती है। वो कौन सी दुनिया है? ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो हम देखते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जहां हम रहते हैं, यहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे है, इसलिए आवाज है, यहाँ मूवमेंट है, कारोबार हम करते हैं, शरीर देह है। एक ऐसी वर्ल्ड है जो इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड, जहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के पार है, हर चीज लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग चलती है, और उस वर्ल्ड को उन्होंने ल्यूमिनस वर्ल्ड कहा, जहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के नीचे, अंडर ल्यूमिनस वर्ल्ड, ल्यूमिनस वर्ल्ड। और एक तीसरी दुनिया उन्होंने कहा है जहाँ हर एक चीज लाइट के स्पीड के बियॉन्ड चलती है, जो उन्होंने सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड कहा है। तो हम देखते हैं कि जहाँ लाइट के स्पीड के बियॉन्ड है, तो वहाँ आवाज भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो वो सुपरलुमिनस वर्ल्ड को ही हमने अपने रूप से धर्मों में, शास्त्रों में ब्रह्म महत्त्व के रूप में कहा गया है। तो परमात्मा का रहने का स्थान इस फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड वो सुपरलुमिनस वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ साइलेंस है, शांति की दुनिया है। अब जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम जब भी आपको आपके क्लिनिक के बारे में याद कराते हैं, हॉस्पिटल के बारे में याद कराते हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं, आपको हमने कहा क्लिनिक, हॉस्पिटल, घर, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, पहुंचते हैं ना, मन से पहुंच जाते हैं। हाँ, मन से पहुंचते हैं, आप देख भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, इस समय ये वहां कारोबार होगी। तो क्या आप क्लिनिक को फिजिकली देख सकते हैं? नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, क्लिनिक तो आपका अलग स्थान पर, भारत में अलग अलग स्थानों पर है। तो वहां आप कैसे पहुंचे क्लिनिक में, कैसे पहुंचे हॉस्पिटल में, घर में कैसे पहुंचे, कैसे देख रहे हैं, कौन देख रहा है? ये स्थूल नेत्र से देख रहे हैं, स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं? नहीं, तो फिर किससे, कैसे देख रहे हैं जी? मन की आंखों से। तो सुबह हमने देखा आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और तीसरे संस्कार। तो मन आत्मा का मुख है, जैसे यहां हम मुख से बातचीत कर रहे हैं, तो मन हमारा मुख है और बुद्धि जो है वो हमारा नेत्र का काम करता है। तो इसलिए जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप कहते हैं उसको मन की आंखें, कहते हैं अंतर चक्षु भी कहते हैं। तो बुद्धि से हम विजुलाइज करते हैं, तो उस रूप में हम देखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम ये फिजिकल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, बुद्धि से उसको विजुलाइज करते हैं। आत्मा को भी हम बुद्धि से विजुलाइज करते हैं, ऐसे ही उस परम धाम को भी हम बुद्धि से विजुलाइज करते हैं। वो वर्ल्ड ऑफ साइलेंस है, शांति की दुनिया है, इस सृष्टि से पार प्रकाश की दुनिया, सुनहरी लाल प्रकाश का महत्त्व, और वो परमात्मा के रहने का स्थान है। और इस धाम की, इस स्थान की महिमा हमने हर एक धर्म में देखी है। तो परमात्मा का रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि परमात्मा जो है वह ज्ञान का सागर है। अगर हम ये सारी सृष्टि को एक वृक्ष के रूप में देखें, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष, तो उसका चैतन्य बीज परमात्मा है और वह आकर हमको ये नॉलेज देते हैं। तो अगर हम देखें, ये शरीर के बारे में नॉलेज आपके पास है, आपके पास है, आप में से तो कई प्रोफेसर्स हैं, पढ़ाते हैं और औरों को समझाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो ये शरीर के बारे में जानकारी तो हमारे पास उपलब्ध है साइंस के द्वारा, आप सिखाते भी हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान, आत्मा से जुड़े हुए जो आध्यात्मिक सत्य हैं, उसका ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम, वो परमात्मा आकर हमें देता है। और वो आध्यात्मिक समझ जिसके आधार से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। आज सुबह हमने बहुत अच्छी बातें सुनी ना, कि हमें कैसे अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, हमारे मन को प्यार से दिशा देनी है। कहा ना हमें कोडिंग करना है, करेंगे ना, करेंगे ना, लक्ष्य रखा है। तो वो शक्ति जो है, वो समझ और शक्ति जो है, वो ज्ञान परमात्मा हमें यहाँ दे रहा है। इसलिए हमने कहा कि वो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का सागर और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सोर्स है। तीसरी बात हमने देखा कि वह सर्वोपरि है, बियॉन्ड ऑल बॉन्डेजेस एंड इन्फ्लुएंसेस। तो फिर से अगर साइंस का हम एक लॉ लेते हैं जिसको लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, तो वैसे फिजिक्स का लॉ है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन में हम नहीं इसको समझते, लेकिन वो सिंपल चीज एक कहता है कि कोई भी सिस्टम है, जब वो सिस्टम आरंभ होता है तो उसमें 100% ऊर्जा होती है, और जैसे वो सिस्टम को यूज करते जाए तो क्या होगी, उसकी ऊर्जा घटती जाएगी। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी कहता है कि वो जब घटती जाती है, नहीं, जिसको हम अपने शब्दों में डेप्रिसिएशन कहते हैं, ड्रेनिंग ऑफ कहते हैं, और जैसे वो ऐसे समय पर आती है कि अभी ऊर्जा समाप्त होने वाली है, तो फिर से उस सिस्टम को हमें रिजुविनेट करना है, उसको फिर से सशक्त बनाना है, नेगेंट्रोपी प्रोसेस जो फिजिक्स में कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो साइंस कहता है कि उस सिस्टम को हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना होगा। अगर इसका सिंपल उदाहरण हम लें तो हम मोबाइल का उदाहरण ले सकते हैं, होता है ना, हम यूज करते हैं ना मोबाइल को, और क्या होता है, थोड़े समय के बाद यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमने घर में भी चार्जर तो है ही, लेकिन ऑफिस में भी रखा ना, क्लिनिक में हर एक के पास है, हॉस्पिटल में भी रखा है ना, गाड़ी में भी है, हाँ वहां भी रखा है, क्योंकि हमें इस मोबाइल को सदा चार्ज रखना है, तो उसको बीच बीच में जैसे ही हम देखते हैं कि थोड़ा डिस्चार्ज होता है मैसेज आ जाता है हमें, मैसेज भी आ जाता है कि अभी कनेक्ट करें चार्जर को। तो आत्मा की भी ऊर्जा जब कम होती जाती है, ये गुणों की ऊर्जा जब कम हो जाती है, हमें मैसेज आता है, मैसेज आता है, मैसेज आता है, मैसेज किस रूप में आता है, छोटी छोटी बात में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, मन से थक रहे हैं, नहीं मैसेज आता है, छोटी छोटी बातों में रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, नहीं हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी वो रिलेशनशिप में थोड़ी दुख की लेन देन होती है, तो ये मैसेज आता है कि क्या रिचार्ज करना है हमें, आत्मा को शांति से या कहां सहन शक्ति से, कहां अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस से चार्ज करना है, नहीं मैसेज आ जाता है। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें उसको कनेक्ट करना है, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो रोल परमात्मा का है। तो परमात्मा सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है, सर्व आत्माओं को सशक्त करने के लिए परमात्मा का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए परमात्मा जो साइकिल हम कहते हैं, जन्म मरण का भी एक साइकिल है, नहीं आत्मा ने शरीर स्वीकार किया और आत्मा को ये शरीर कभी ना कभी उसकी आयु के बाद त्यागना है, ऐसा है ना, जन्म से ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, नहीं आप तो दोनों ही फेजेस को देखते हैं, नहीं जन्म को भी देखते हैं मृत्यु को भी देखते हैं, तो हम समझते हैं कि एक यात्रा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि आत्मा जो है वो इस जन्म और मरण इस साइकिल में आती है। तो आत्मा का जन्म होना, गर्भ में प्रवेश करके जन्म होना और फिर आत्मा का शरीर छोड़ना, उसको हमने मृत्यु का, शरीर स्वीकार करना जन्म, शरीर छोड़ना मृत्यु। तो शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जन्म होता है, उसके बाद से उसकी यात्रा कर्म की शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कर्म के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कर्म और फल, फ्रूट। कोई ऐसे कर्म है जो हम देखते हैं हमें बहुत सुख देते हैं तो वो कर्म का फल हमें सुख मिलता है, और कोई हमारे ही अपने ऐसे कर्म है जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि हमें कोई ना कोई प्रकार का दुख का भी अनुभव होता है। तो इसलिए कर्म फल दुख सुख ये साइकिल है। तो आत्मा इस साइकिल में आती है, लेकिन हमने देखा कि परमात्मा का रोल क्या है, हम सब आत्माओं को पवित्र बनाना, क्लेंजिंग करना, पतित पावन, हम सब आत्माओं को शक्ति देना। इसलिए परमात्मा वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो इस साइकिल में नहीं आती है। इसलिए परमात्मा ने अपने परिचय में कहा है कि मैं जन्म और मरण के चक्र से न्यारा हूं। लेकिन परमात्मा का भी बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है, वो कैसे वो कर्तव्य हमारे साथ करता है, हमें कैसे सुख देता है, ज्ञान देता है, हमें प्योरिफाई करता है, ये बहुत सुंदर एक समझ है जो हम आगे समझते जाएंगे। तो कर्तव्य जरूर करता है लेकिन उनका कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। तो वह जन्म और मरण का जो चक्र है उससे न्यारा है, इसलिए कर्म और फल से भी चक्र से न्यारा, सुख दुख से न्यारा, सुख देने वाला, सुखदाता है। सुखदाता कहते हैं उनको, दुख हरता है और सुख दाता है। तो इसलिए परमात्मा के लिए महिमा में कहा कि वो सर्वोपरि है। चौथी बात, वो सर्व गुण और शक्तियों का स्रोत है। इस शरीर को जो भी आवश्यक है वो हम देखते हैं सृष्टि पर हमारे लिए उपलब्ध है, जो भी साधन इस शरीर को चाहिए उपलब्ध है। हाँ, और आप अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से इसको प्राप्त करते हैं। आत्मा को जो चाहिए, नहीं कोई पेशेंट आपके पास आता है और शारीरिक रूप से अपने आप को कमजोरी फील करता है, शरीर उसका बहुत वीकनेस फील करता है, वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट देते हैं, दवाई देते हैं, टॉनिक देते हैं, डाइट देते हैं। लेकिन अगर वो मन से कमजोर है, अंतर से वो बहुत लो फील कर रहा है, परेशान है, तो क्या करते हैं, चलो साइकेट्रिस्ट भी हमें दवाई दे देंगे थोड़े समय के लिए, हम जानते हैं हमें थोड़ा रिलैक्स आदि कर लेता है, लेकिन फिर भी उस मन को सशक्त करना है, मनोबल से भरना है, तो उसके लिए स्रोत कौन है? उसके लिए स्रोत कौन है? आत्मा को जब शक्ति चाहिए तो आत्मा के लिए शक्ति का स्रोत वो परमात्मा पिता है, जो शक्तियों का सागर है, जिसको हमने सर्वशक्तिवान कहा। तो आत्मा के लिए हर गुण और शक्ति का स्रोत वो है। हम अगर देखते हैं कोई कोई स्थान पर जहां हम आते हैं, यहाँ तो बहुत सुंदर शीतल वातावरण है, लेकिन कहाँ कहाँ बहुत गर्मी होती है। तो विशेष करके हॉस्पिटल आदि क्लिनिक में तो आपको ठंडक रखना पड़ता है आपके ट्रीटमेंट्स आदि के लिए, तो वहां तो एसी ऑन करते हैं। तो वातावरण बाहर में कैसा भी गर्मी का हो, लेकिन जैसे आपने साधन यूज किया एसी, तो क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर पर आपको आपके क्लिनिक को रखना है, आईसीयू को रखना है, ऑपरेशन थिएटर को रखना है, रख सकते हैं ना वो कूलनेस में। लेकिन मन को अगर कूल बनाना है, मन को अंदर से रिलैक्स करना है, मन को अंदर से शीतल बनाना है, तो उसका स्रोत कौन? वो स्थूल रूप से कोई साधन है जिससे मन शीतल हो जाए? तो उसलिए हम देखते हैं कि मन की शीतलता का तो स्रोत परमात्मा पिता है, क्योंकि वो शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। तो आत्मा के हर गुण और शक्ति का स्रोत वो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सर्वमान्य है। हम देखते हैं कि हमारे सभी धर्म पिताओं ने बहुत प्यार से हमें उनके तरफ दिशा दी, और इसलिए हमारे सभी धर्मों में हम उनको उस प्यार से याद करते हैं। लेकिन हर एक धर्म पिता ने जो हमें दिशा दी, उसमें एक ऐसा परिचय है जो कॉमन है, इसलिए हम देखते हैं कि वो सर्वमान्य है। हम सभी आत्माओं का पिता एक है। तो हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में भी क्राइस्ट ने कहा कि उस गॉड फादर को हमें याद करना है। उन्होंने अपना परिचय क्या दिया कि मैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, संदेश लाया हूं। आपको उस गॉड फादर को याद करना है। जब लास्ट में उसको क्रॉस पर भी चढ़ाया गया तो उसने कहा, ओ गॉड फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, अर्थात इनको माफ कर देना। अर्थात उन्होंने हमारी मन बुद्धि को किसके तरफ इशारा दिया, किसके तरफ दिशा दी? उस परमात्मा की तरफ। जब भी हीलिंग के बारे में हम उनके बहुत सुंदर अनुभव सुनते हैं, तो हम देखते हैं वो हमेशा बाइबल में लिखा है कि आई टच एंड प्रे गॉड हील्स, ईश्वर पिता तुम्हें ठीक करता है, उसको प्यार से याद करो। तो वहां भी हम देखते हैं कि मन बुद्धि को उस ईश्वर से जुड़ाया गया। गॉड इज काइंडली लाइट, स्नेह की ज्योति है, शांति की, प्रेम की ज्योति है। फिर हम देखते हैं कि गुरु नानक जी ने भी कहा, एकोंकार निराकार निर्वैर सत श्री अकाल, सतगुरु को याद करो। तो कितना प्यार से हम देखते हैं हमारे मन बुद्धि को उन्होंने उस सतगुरु की तरफ इशारा दिया जो निराकार है। तो हम देखते हैं कि शरीर जो है वो फिजिकल है, इसलिए हम उसको साकार कहते हैं, और आत्मा जो है मेटाफिजिकल है, ऊर्जा है, एनर्जी है, इसलिए उसको निराकार शब्द से कहा गया है कि जिसका जो शरीर रूपी साधन नहीं, उससे न्यारा उस वो आध्यात्मिक ऊर्जा। तो परमात्मा भी वो निराकार स्वरूप है, आत्मा का पिता है, इसलिए उस निराकार पिता की महिमा की गई है, जिसके लिए बहुत सुंदर सुंदर गुरुबानी में गायन है, सुखमणि में भी बहुत सुंदर गायन है। हमारे रोज के हमारे जो स्पिरिचुअल स्टडी है उसमें परमात्मा बहुत बार उन शब्दों को हमें समझाते हैं कि मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार, अर्थात जो परमात्मा ने से मनुष्य से फिर से देवता बनाने की समझ दी, हमारी कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसको एलिवेट करके डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिवर्तन करने की समझ और शक्ति दी। जैसे आज भी कोई बहुत विशेष कोई मदद हमें करता है, कोई बहुत सुख का कार्य हमें देता है, सहयोग देता है, हम कहते हैं ये तो देवता है, कहते हैं ना, कहते हैं ना, ये तो फरिश्ता है, ये तो देवता है, कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ये तो देवता जैसा है। तो देवता अर्थात एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, दैवी गुणधारी आत्मा। तो मनुष्य को साधारण से ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में ले जाने वाला वो सतगुरु, सत श्री अकाल। फिर हम देखते हैं कि इस्लाम में भी उस नूरे इलाही के रूप में उनको याद किया है, तो वहां भी निराकार स्वरूप में याद किया है कि वो नूर है। नूर अर्थात लाइट, प्रकाश, तो वो सुप्रीम लाइट है, महाज्योति स्वरूप है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जूस धर्म जो है, यहूदी धर्म जो है, वहां भी मोसेस ने बहुत सुंदर प्रकाश का स्वरूप देखा, साक्षात्कार में बर्निंग बुश प्रकाश देखा, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने फिर वो 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं, तो वहां भी लाइट के रूप में देखा गया। हम देखते हैं हमारे सभी और जो भी धर्म पिताएं हैं, उन्होंने भी तपस्या अर्थात ईश्वर को याद करने की तपस्या का स्वरूप हमारे सामने रखा कि उसे याद करना है, मन बुद्धि को उसकी याद में समाना है। अगर बुद्धिज्म में भी हम देखें तो हमेशा मेडिटेटिव पोस्चर दिखाया है ना, इसलिए हम कहां भी शांति के लिए भी, मेडिटेशन के लिए भी हम बुद्धा का स्वरूप रखते हैं ना, अपने घरों में भी रखते हैं, क्योंकि उनको देखते ही क्या याद आता है, वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। किसको याद कर रहे हैं, किसके साथ योग है, तपस्या कर रहे हैं, किसके साथ योग, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। और वहां भी हम देखते हैं कि कैसे बुद्धिज्म में भी उन्हें ज्ञान का बोध हुआ और फिर उन्होंने कर्मों के बारे में, श्रेष्ठ कर्म का जो पाठ है, वो बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है। फिर हम देखते हैं कि जैनिज्म में भी तपस्या का महत्व दिया है। महावीर स्वामी जी ने भी 12 वर्ष तपस्या की, बताते हैं उसमें कि कैसे 12 वर्ष उन्होंने तपस्या की, जिसमें उन्होंने अपने देह के स्वरूप को, देह के अभिमान को जीता, जो देह भान है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको जीता, और उसका प्रतीक है, इसलिए जैनिज्म में जय जिनेन्द्र कहते हैं, जिन्होंने अपने कर्म इंद्रियों को जीता। तो महावीर स्वामी जी ने वो प्राप्त किया, अपने देह भान को जीता, उसका प्रतीक है वस्त्र का त्याग किया। देह भी क्या है आत्मा के लिए, एक वस्त्र के रूप में कॉस्ट्यूम है ना, सोल जो है ये बॉडी रूपी कॉस्ट्यूम को यूज करके अपना अपना पार्ट बजा रही है। तो वहां भी हम देखते हैं तपस्या में मन बुद्धि को उस ईश्वर की याद में रखा है, आत्मिक स्मृति में स्थित, क्योंकि जो देह वस्त्र का त्याग है वो वास्तव में सिंबॉलिक है इस शरीर के भान को त्याग करना, बॉडी को, अवेयरनेस को, उसके कॉन्शियसनेस को त्याग करना। और फिर हम देखते हैं कि पारसी धर्म में भी बहुत प्यार से उस लाइट को याद किया गया है, फायर जो है, अग्नि जो है, उनको याद किया गया है, अग्यारी कहते हैं, फायर टेम्पल कहते हैं। तो हर एक धर्म में परमात्मा को लाइट के रूप में याद किया है, लेकिन एक ऐसा धर्म है जिसमें साकार रूप में ही पूजा की गई है, वो कौन सा धर्म है, जहां अनेक स्वरूप है, साकार स्वरूप याद करने के लिए ईश्वर को, कौन सा धर्म, हिंदू धर्म, जिसमें हम देखते हैं कितनी देवी देवताओं का गायन है, 33 करोड़, कितने सारे स्वरूप। अब 33 करोड़ मीन्स वो एक्चुअली पॉपुलेशन है उस समय का, 33 करोड़ बड़ा है ना अमाउंट, तो पॉपुलेशन ही उस समय ऐसे देवी आत्माओं का है, डिवाइन कॉन्शियसनेस वाली सोल्स का है। और हम देखते हैं कि वहां भी एक निराकार स्वरूप परमात्मा का यादगार है, शिवलिंग का। तो लिंग फॉर्म में हमने देखा है वो निराकार स्वरूप में ईश्वर की याद का है, जिसमें हरेक धर्म, हरेक मंदिर जो है, अनेक भारत में शिव के मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगम गायन किए गए हैं, उन हरेक मंदिर के नाम जो है या तो नाथ है या तो ईश्वर है। तो नाथ माना लॉर्ड, ईश्वर माना भगवान, गॉड। तो वो हरेक जो नाम है वो अलग अलग है, क्योंकि फिर सिर्फ ईश्वर के जो कर्तव्य है उसके साथ वो नाम जुड़े हुए। जैसे सोमनाथ, तो सोम रस किसको कहा जाता है, नेक्टर को कहा जाता है। तो जैसे शास्त्रों में कथाएं हैं कि कैसे कोई व्यक्ति का देहांत हो गया और फिर कैसे ये अमृत अगर उसको दिया गया तो उसको जीवन मिल गया। तो इस समय अगर देखें तो मनुष्य का जीवन जब दुखी है, तनाव में है, डिप्रेस्ड है, उसको जीवन जीने की कोई आगे आश ही नहीं है, तो भले फिजिकली वो अलाइव है लेकिन उस रूप से जीवन कैसा है, जागृत, जो चैतन्यता है, जो सुख का अनुभव है, आनंद का अनुभव है, उमंग उत्साह का अनुभव है, वो नहीं है। तो जीवन जीते हुए भी मृत्यु के समान जीवन, जहां खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है। तो ऐसे जीवन को परमात्मा ये ज्ञान की समझ से, ज्ञान का सोम रस हमें देकर नया जीवन बनाता है, एक हायर पर्पस हमें दिलाता है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव आप सुनते रहेंगे कि कैसे इस स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, हमारे पूरी हमारे जीवन के प्रति जो हमारा विजन है वो चेंज हो जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा ऐसा ज्ञान का सोम रस हमें पिलाता है। हमें रामेश्वरम, जहां राम जैसे देवताओं ने भी उसकी आराधना की, अर्थात उनका भी पिता परमात्मा, जो परमात्मा निराकार के रूप में गायन है, अमरनाथ, अमर बनाने वाला नाथ। तो हमें अमर कैसे बनाता है? ये तो हम सत्य जानते ही हैं कि शरीर तो हमें छोड़ना ही है, नहीं अमर तो जरूर हम सब बनना चाहेंगे, लेकिन परमात्मा हमें ये ज्ञान का की समझ देकर अमर आत्मा का परिचय देते। अब जैसे हमें आत्मा का परिचय मिल जाता है, तब क्या हो जाता है, हमारे अंदर में जो एक भय है, चिंता है, हम जब समझ जाते हैं कि हम ये जीवन को जैसा चाहें हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, और एक जर्नी है, ये जर्नी अगर पूरी होगी तो नई जर्नी आरंभ होगी। आत्मा तो है ही अजर अमर अविनाशी। तो जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का की चिंता है, या हमारे मृत्यु का भय या और किसी की मृत्यु जो हो गई है परिवार में बहुत समीप, और इस समय हम देखते हैं अकाली मृत्यु हो रही है ना, अचानक और छोटी आयु में ही बहुत सारे हम प्रसंग सुनते रहते हैं, ऐसे सुनते हैं। तो इसलिए ऐसे समय पर मन में थोड़ा बहुत भय आ ही जाता है, चिंता हो ही जाती है। तो परमात्मा ये अमर आत्मा का परिचय और अनुभव कराता है, जिससे हमें समझ मिल जाती है। तो ये आत्मा को जो अंदर में भय है, मृत्यु के आसपास जो एक कहीं ना कहीं अंदर में भय और समझ नहीं है कि क्या होता है मृत्यु के बाद, क्या कैसे, तो वो समझ देने से हम देखते हैं वो भय से हम मुक्त हो जाते हैं। तो अमर अर्थात निश्चिंत हो जाते हैं, आत्मिक भाव में रहते हैं। बम्बई में, मैं बम्बई से हूँ, वहां बाबुलनाथ मंदिर है, तो बबुल जो है वृक्ष है, उसमें दातून के रूप में उसको यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे कांटे हैं, तो वो कांटे समान जो हमारा थोड़ा बहुत स्वभाव संस्कार हमने ऐसे अपने में धारण कर लिए, जिससे हम एक दूसरे को दुख देते हैं। जब थोड़ा ईगो स्ट्रगल हो जाता है जीवन साथी के साथ, दुख देते हैं हम देते हैं। हाँ, कोई छोटी बात पर अगर कभी बच्चों के साथ हम उनको गुस्सा करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे, तो क्या होता है, दुख मिलता है, दुख उनसे भी मिलता है, हमको, हम भी उनको दुख देते हैं गुस्सा जब हो जाता है। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, जो कांटों के समान है, दुख देने वाले, हमें भी दुख देते हैं औरों को भी दुख देते हैं। आज सुना ना हमने, वो सारे इमोशंस जो कौन से हैं, कौन से हाथ में है, लेफ्ट साइड, वो जैसे हम उन इमोशंस के प्रभाव में आते हैं, हम पहले स्वयं को और फिर औरों को दुख देते हैं। तो ऐसे कांटे समान जो संस्कार है उनको परिवर्तन करने वाला, हमें समझ और शक्ति देकर उसको परिवर्तन करके फिर से हमें फूल जैसा, जो हमारे राइट साइड पे हमारे ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं, उसको हमारा स्वभाव बनाने वाला, उसको फिर से हमारे अंदर नेचुरल स्वरूप में धारण कराने की समझ और शक्ति देने वाला बाबुलनाथ। तो हम देखते हैं कि हम परमात्मा हमें परिचय देते कि हम उनके जैसे हैं। कैसे उनके जैसे? हमारा स्वरूप भी उनके जैसा नहीं, आजकल जैसे नहीं बच्चे और माता पिता नहीं ट्विनिंग करते, एक ही प्रकार का ड्रेस पहनते हैं, एक ही प्रकार से नहीं, हम देखते हैं कई ऐसे वीडियोस भी आते हैं जो साथ में डांस कर रहे हैं, साथ में कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि आप मेरे जैसे हो, तो स्वरूप में भी हम उनके जैसे। तो जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप, परमात्मा का भी निज स्वरूप परमात्मा आकर हमें परिचय देता है कि मैं भी निराकार बिंदु स्वरूप हूं और सर्व गुण और शक्तियों का सिंधु हूं, सागर, गुण और शक्तियों का स्रोत हूं और सागर हूं, सोर्स ऑफ ऑल वर्चूज एंड क्वालिटीज। लेकिन फॉर्म कैसा है? समान है, बिंदु समान। जैसे आप देखिए, अगर हम देहधारी हैं, हम शरीर जो हमने प्राप्त किया है माता पिता से, तो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन है, इसलिए हमारे माता पिता भी कैसे होंगे? मनुष्य ही, ठीक है। कोई प्राणी है तो हम देखते हैं उसके माता पिता भी उसी स्पीसीज का होगा ना। ऐसे आत्मा जो है वो निराकार ज्योतिर्बिंदु, इसलिए आत्मा का पिता भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और वो बिंदु होते हुए भी सिंधु के समान, अर्थात हर गुण और शक्ति का वह असीम सागर है। दूसरा, परमात्मा कहते कि तुम मेरे जैसे हर गुण और शक्ति में हो। तो परमात्मा की जो हम महिमा गाते हैं, हम कहते हैं ना शांति का सागर, प्यार का सागर, हम जब भी प्रार्थना करते हैं उनकी महिमा गाते हम उनकी विशेषताएं, उनकी महिमा गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि मैं जो गुण और शक्तियों में संपन्न हूं, सागर हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। हर गुण और शक्ति का वर्षा जो है, इनहेरिटेंस जो है, परमात्मा प्रॉपर्टी के रूप में, वर्षे के रूप में हमें देता है। तो वो अगर शांति का सागर है तो हम कौन है? हम कौन है? शांत स्वरूप आत्माएं। तो अब हमें उनसे शांति मांगना है, मांगना है। आपके बच्चा आकर आपसे भोजन मांगता है नहीं? जब आता है और आप भोजन कर रहे हैं तो वहां खड़े होकर कहता है, मम्मी थोड़ा मुझे एक रोटी दे दो, या मुझे थोड़ा सा ये चावल या दाल दे दो। मांगता है, क्या करता है? बैठकर आपके साथ भोजन करता है, अधिकार है ना। शायद आपके प्लेट में कोई चीज है तो वो भी ले सकता है, वो अधिकार है उसका। जो कुछ आपका है वो किसका है? बच्चों का है ना। तो हम भी परमात्मा के हर गुण और शक्ति के मालिक बन जाते, उसके बालक हैं, इसलिए वो हमें मालिक बना देता है। तो परमात्मा हमें अपने हर गुण और शक्ति का मालिक बना देता है, अपने जैसा बनाता है। तो धीरे धीरे हम यह राजयोग के द्वारा अपने आप को उन गुण और शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो स्वरूप में हम देखते हैं समानता है। इसलिए अब जब हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, जब हम अपने आप को देखते हैं तो यहाँ हम बिंदु स्वरूप को देखते हैं। नहीं, अभ्यास कराया ना, अभी हम सभी करा रहे हैं आपको। यहाँ क्या देखते हैं? पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। हम जानते हैं एक्चुअल सीट कहाँ है, क्योंकि आप तो डॉक्टर्स हैं, आप जानते हैं एक्चुअल सीट कहाँ है? मस्तिष्क के मध्य में। तो वहां ये सुंदर आत्मा चमक रही है। तो उसके फॉर्म के रूप में हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में कहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि परमात्मा भी, उनका भी स्वरूप ऐसा ही है, लेकिन उनकी प्रभा मंडल, उनका जो ऑरा है वो बहुत सुंदर है, दिव्य है, क्योंकि वो हर गुण और शक्ति का सागर है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो परमात्मा को भी हम मन बुद्धि से, हम उनके साथ जब कनेक्ट करेंगे तो स्वरूप में समानता के रूप में देखते हैं। अब परमात्मा ने आकर अपना नाम हमें बताया है। परमात्मा कहता है मेरा नाम शिव है। तो ये शिव शब्द सुनकर हमें लगता है शायद कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में शिव शब्द संस्कृत शब्द है, और संस्कृत भाषा हम जानते हैं सभी भाषाओं की मदर है। बहुत हर एक भाषा में कुछ ना कुछ शब्द वहां से आए हुए हैं। तो संस्कृत में ये शब्द का अर्थ है बिंदु। तो जब भी बिंदु डालने के लिए कहा जाता था तब कहते थे डालो शिव बिंदु। दूसरा इसका अर्थ है बीज, अर्थात सीड। और तीसरा इसका अर्थ है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। अब परमात्मा का स्वरूप भी इसी शब्द में समाया हुआ है। उनका हमारे साथ संबंध, वो हम सर्व आत्माओं का पिता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, लिविंग सीड है, क्रिएटर है जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए वो उनका रोल जो है वो भी स्पष्ट हो जाता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका कर्तव्य है कल्याणकारी। तो वो हम सर्व आत्माओं का कल्याण करता है, हमें परिवर्तन करता है, हमें शक्ति देता है, हमें गाइड करता है, इसलिए कहा गया कि कल्याणकारी। तो उस एक शब्द में ही तीनों समाये हुए, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। तो हम जब भी उनको याद करते हैं, यहाँ हम कई बार ये शब्द शिव बाबा कहते हैं। बाबा अक्षर क्यों कहते हैं आपने सुना? कई लोग आसपास ये बाबा शब्द कहते हैं, हाँ कई हमारे क्लासेस में भी कभी कभी आपने सुना होगा। तो बाबा शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि संबंध से वो हमारे माता पिता है। ऐसे तो हमने भक्ति में भी गाया है कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु त्वमेव, सर्व संबंध हम उनसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मुख्य संबंध के रूप में आत्माओं के पिता के रूप में हम याद करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आप भी जब अपने घर जाते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल में वहां के डीन भी हो सकते हैं, वहां हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वहां बहुत अच्छा बड़ा पोजीशन हो सकता है, लेकिन घर में जाते हैं तो आपको अपने बच्चे क्या कहेंगे? डैडी कहेंगे, मम्मी कहेंगे ना? आपका जो टाइटल है उससे याद करेंगे या डैडी मम्मी कह के याद करेंगे? क्या कहेंगे? डैडी मम्मी है ना, कोई भी पोजीशन हो, लेकिन घर में तो आप उनके माता पिता है। ऐसे परमात्मा की महिमा तो ऊंचते ऊंच है, हम उनको बहुत प्यार से ऊंची महिमाओं से याद करते हैं। वो विश्व का पालनहार है, विश्व का रचयिता है, वह सागर है ज्ञान और गुणों का, लेकिन फिर भी हमारा कौन है? ये उसकी महिमा है, ये उसका कर्तव्य है, उसका परिचय, लेकिन मेरा कौन है, हमारा कौन है? माता पिता है। इसलिए हम उस समीप संबंध से उनको शिव बाबा कहते हैं, या कई बार हम सिर्फ बाबा शब्द याद करते हैं। तो जब हम उनको प्यार से याद कर रहे हैं, वो संबंध को अनुभव कर रहे हैं, तो हम बाबा कहते हैं। जैसे आपके भी बच्चे क्या करते हैं, मम्मी डैडी मॉम डैड पॉप्स, कितने सारे अलग अलग नाम है ना, कोई मम्मा कहते हैं, कोई अलग अलग, हर एक अपने माता पिता को हर एक अलग नाम, एक प्यारा नाम होता है, जिससे वो संबंध की समीपता, अपनापन जो अधिकार है उस संबंध का, वो अनुभव होता है। तो यहाँ भी हम बहुत प्यार से उनको इसलिए शिव बाबा कहते हैं, या कई बार आप ये बाबा शब्द सुनते होंगे, और साथ साथ कई बार आप सुनते होंगे मेरा बाबा, अर्थात वो मेरा है, वो अपनापन ईश्वर के साथ अनुभव करते हैं। अब जब अपनापन अनुभव करेंगे तो क्या होगा? वो समीपता महसूस होती है। नहीं, एक बच्चे को अपने पिता को या माता को याद करने के लिए कोई शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं, छोटेपन में कोई ट्रेनिंग नहीं देते, आपको ट्रेनिंग नहीं देते, तो कैसे याद करता है बच्चा अपने माता पिता को, कैसे याद करता है? उसको ट्रेनिंग नहीं मिली फिर भी याद करता है, कैसे याद करता है, कैसे याद करता है? छोटा बच्चा आप देखो, जन्म से ही कुछ दिनों का ही है और उसकी माँ की गोद में है, पिता के पास है, तो निश्चिंत है। जैसे अपरिचित व्यक्ति के हाथ में दे दिया, क्या हो जाता है बच्चा? रेस्टलेस, रोना शुरू हो जाता है। तो उस आयु में भी अभी कुछ दिन है, फिर भी बच्चे को अपने माता पिता की याद और वो बॉन्ड जो है, कनेक्शन जो है, वो बहुत गहरा महसूस करता है, करते हैं ना? तो कैसे याद करता है? जैसे ही वो संबंध जुड़ा, वो याद समीप हो जाती है, अपनापन महसूस होता है। तो छोटे बच्चे को भी हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, लेकिन हम तो ईश्वर को बहुत कंप्लेन करते हैं कि क्या करें, हमारा मन तो आप में लगता नहीं है। नहीं कहते हैं ना, प्रार्थना के समय भी कहते हैं ना, हम चाहते हैं लेकिन मेडिटेशन में एकाग्रता नहीं होती, कंप्लेन करते कहते हाँ। अगर आपका बच्चा आपको कहे कि मम्मी डैडी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन मैं आपको याद नहीं कर सकता, सॉरी मेरा मन आप में लगता नहीं, आई एम सॉरी, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या महसूस होगा, क्या महसूस होगा? कि वो प्यार करता है मुझे, क्योंकि प्यार माना ही संबंध, माना ही याद। जिसको हम प्यार करते हैं उसको याद करना नहीं पड़ता है, उसकी याद भुलाना मुश्किल है, ऐसा है ना, ऐसा है ना? तो यहां भी जैसे हमारा ये संबंध ईश्वर से हम अनुभव करते हैं और उस प्यार से हम उनको याद करते हैं, उस संबंध की समीपता हम महसूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो याद धीरे धीरे नेचुरल हो जाती है और वो बहुत सहजता से हम हर समय उनको साथ अनुभव करते हैं। तो इसलिए कई बार यहाँ आप लोगों से जो रेगुलर हमारे भाई बहन या आपकी सेवा में भी हैं, उनसे भी आप इंटरेक्ट करेंगे तो बार बार वो कहेंगे कि बाबा हमारे साथ है, वो ये कार्य कर रहा है। तो ये बहुत सुंदर परमात्मा हमें अपना परिचय देकर हमारी मन बुद्धि को अपने साथ जोड़ने की ये सहज विधि सिखा देता है। और जैसे जैसे हम बहुत प्यार से उनको याद करते हैं तो वो याद सहज हो जाती है। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम उस याद का अनुभव करें जहां हम बहुत सहजता से याद करेंगे उनको, बहुत इजीली एक्सपीरियंस, हम वो संबंध के आधार से याद करेंगे। थोड़े समय के लिए मन और बुद्धि को बाहर की बातों से, बाहर के वातावरण से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेते हैं। एक कछुए के समान मन और बुद्धि को अंतर की ओर दिशा देते हैं। मन की आंखों से अपने आप को देखते हैं, मस्तक के मध्य में अपने सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। कुछ समय के लिए इस आत्मिक स्वरूप को महसूस कर रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। इस शांति की मनोस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। कुछ समय के लिए अब मन बुद्धि की तार को उस शांति के सागर के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमने समझा है कि ईश्वर पिता जो परम धाम निवासी है, कुछ समय के लिए मन के द्वारा उस शांति की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से अपने सुंदर आत्मिक स्वरूप को देख रहे हैं जो इस विश्व, इस दुनिया के पार, आवाज की दुनिया से पार, सूर्य चांद से भी पार, उस प्रकाश की दुनिया में पहुंचते हैं। मन की आंखों से विजुलाइज करते हैं उस वर्ल्ड ऑफ लाइट को, सॉफ्ट गोल्डन रेड लाइट, जहां उस परमात्मा का निवास स्थान है, वो परम ज्योति स्वरूप। परमात्मा मुझ आत्मा का पिता उस सुप्रीम लाइट को मन की आंखों से देख रहे हैं जो शांति का सागर है, मन की आंखों से महसूस कर रहे हैं। उस शांति के सागर से वो असीम शांति की अनुभूति परमात्मा पिता प्यार का सागर है, मेरा है। मन से उनके साथ ये समीप संबंध को अनुभव करते हैं। परमात्मा का ये शुद्ध प्यार, अनकंडीशनल लव अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। परमात्मा का प्यार हमारे मन को, हृदय को सुकून दे रहा है। परमात्मा की इस शांति को अपने अंदर समाते हुए, उस प्यार को अपने अंदर भरते हुए, उनके साथ ये समीप संबंध अनुभव करते हुए, उनको अपना साथी महसूस कर रहे हैं। अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए अपने आप को फिर से हम यहां इस संगठन में उपस्थित देखते हैं, मन के द्वारा फिर से हम यहाँ पहुंच जाते हैं। अंतर में हमने अनुभव कर लिया है कि अब जब चाहे हम कुछ क्षणों के लिए उस परमात्मा से कनेक्ट करते हुए अपने आप को उनकी शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं।